दिन भर 22 दिसंबर रविवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। दिल्ली के रामलीला मैदान में नागरिकता कानून और एनआरसी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी,
ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद क्या नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों पर पड़ेगा असर?
मेरे ख्याल से कुछ समय तक तो प्रोटेस्ट पर थोड़ी रोक लगेगी और लोग थोड़ा रुक के सोचेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है।
सुनवाएंगे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से खास बातचीत और होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नागरिकता कानून का बचाव किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नए कानून के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। नए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले 10 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को कानून से डरने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान चुनाव के शुरुआती नतीजों में मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को जीत मिलती नजर आ रही है। चुनाव में आधे से ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं, लेकिन गनी के मुख्य प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि वो इन नतीजों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। हांगकांग में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चीन के वीगर मुसलमानों के समर्थन में रैली निकाली। माना जा रहा है कि चीन ने शिनजियांग के हजारों वीगर मुसलमानों को नजरबंदी कैंपों में भेज दिया है। हालांकि चीन कहता है कि उसने किसी को कैद नहीं किया है, बल्कि वो इन कैंपों में इन लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है। हांगकांग में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हर किसी को बुनियादी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रैली के दौरान पुलिस और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एक ब्रितानी सुपरमार्केट चेन टेस्को ने एक चीनी सप्लायर से सामान लेना बंद कर दिया है। उस चीनी सप्लायर पर आरोप है कि उसने कैदी श्रमिकों से जबरदस्ती चैरिटी क्रिसमस कार्ड पैक करवाए। दरअसल एक कार्ड में एक पर्चा मिला था जिसमें हाथ से लिखा हुआ था कि शंघाई में विदेशी कैदियों से उनकी मर्जी के बिना ये काम करवाया जा रहा है। इसके बाद टेस्को ने वहां उत्पादन बंद करने का फैसला किया। इराक में नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा से पहले देश के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। कई हफ्तों से जारी इन प्रदर्शनों में लोग पूरे राजनीतिक तंत्र में बदलाव की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने लोगों की नाराजगी की वजह से प्रधानमंत्री अदेल अब्देल महदी को इस्तीफा देना पड़ा था। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि वो अपने नए नेता में क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारी शर्त है कि वो स्वतंत्र होना चाहिए। हम एक ईमानदार चुनाव आयोग भी चाहते हैं। उस आयोग का क्या काम जो पार्टियों के कहे पर चलता हो। ये थे एक इराकी प्रदर्शनकारी के शब्द। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक पिछले 2 दिन से सीरिया के इदलिब प्रांत में जारी संघर्ष की वजह से कम 25,000 आम नागरिक अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। खबरों के मुताबिक अब ये लोग उत्तर में उन इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं जो तुर्की सीमा के पास हैं। उज्बेकिस्तान में देश के पूर्व नेता इस्लाम करीमोव की मौत के 3 साल बाद पहली बार संसदीय चुनाव हो रहे हैं। इस बार के चुनाव का नारा है, नया उज्बेकिस्तान नया चुनाव। वहां खासतौर पर राष्ट्रपति शवकैट मजियोएव के कार्यकाल में देश में हुए सुधारों की बात हो रही है। राष्ट्रपति शवकैट ने इस्लाम करीमोव के बाद 2016 में गद्दी संभाली थी। राष्ट्रपति शवकोट ने अर्थव्यवस्था में सुधार किए, मीडिया को अधिक स्वतंत्रता दी और कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। लेकिन चुनाव में लड़ रही सभी 5 पार्टियां राष्ट्रपति को समर्थन दे रही हैं, जबकि असली विपक्षी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्रिसमस के मौके पर 5,000 बच्चों को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए जा रही फ्रांस की ट्रेन को फिर से बहाल कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं।
विविधता में एकता, विविधता में एकता, विविधता में एकता।
दिल्ली के रामलीला मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की। ये रैली दिल्ली की 1700 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर की गई थी। बीजेपी की इस धन्यवाद रैली को दिल्ली चुनाव के शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण की शुरुआत अपनी पार्टी और खुद की प्रशंसा से की, साथ ही उन्होंने अवैध कॉलोनियों को लेकर दूसरी पार्टियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 1.5 घंटे से भी अधिक लंबे भाषण में आधा घंटा अपनी सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस विषय पर भी आए जिसके बारे में पूरा देश सुनना चाहता था। नागरिकता संशोधन कानून पर उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सताए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का।
ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे भाषण में लगातार विपक्ष पर हमलावर रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी, गांधी परिवार से लेकर ममता बनर्जी तक को निशाने पर लिया। उन्होंने देश के अधिकतर शहरों में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के लिए विपक्षी पार्टियों, खास करके कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में NRC कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है और अभी तक NRC को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है।
पहले ये तो देख लीजिए कि NRC के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हो, झूठ फैलाया जा रहा। कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे नक्सली, अर्बन नक्सल ये अफवाह फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि इस देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुसलमान अफवाह फैलाने वाले विपक्षी पार्टी के टैप रिकॉर्डर की ना सुने, बल्कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि NRC कांग्रेस लाई थी, ना कि उनकी सरकार। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि असम समझौते के तहत कांग्रेस ने NRC केवल असम में लागू करने के बारे में विचार किया था। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो भी असम में अवैध रूप से आया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे निकाला जाएगा। लेकिन बीजेपी पूरे देश में NRC लाना चाहती है, इसकी घोषणा संसद में की गई है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय NRC से इसलिए पल्ला झाड़ लिया है क्योंकि उनके सहयोगी खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा,
आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया इस रैली में कि अभी किसी भी प्रकार का कोई मसौदा NRC का तैयार नहीं हुआ है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, उस पर कोई कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आया है। यानी एक तरीके से वो इससे पल्ला छुड़ाते हुए दिखे और उसके पीछे के भी कारण आप जान लीजिए। नवीन पटनायक जी ने, पिछले दिनों नीतीश कुमार जी ने, उनके खुद के सहयोगी रामविलास पासवान जी ने, उनके एक और सहयोगी सुखबीर बादल जी ने साफ तौर पे कहा कि भाई NRC पे हम आपका साथ नहीं देंगे। तो हो सकता है कि उनके बयानों से एक अंदर कोई सहमति बनी हो। आधिकारिक रूप से इस पे कोई बयान आगे भी आ जाता है सरकार का, तो लोगों के मन में डर NRC को लेकर ज्यादा था पूरे देश में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार विपक्षी पार्टियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को विपक्षी पार्टियों के बहकावे में नहीं आने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के क्या मायने समझे जाएं? क्या इससे विरोध प्रदर्शन थम जाएंगे? यही जानने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस से बात की।
देखिए, पहली बात तो जितनी बार प्रधानमंत्री ने झूठ शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में किया, पहले कभी शायद किया न होगा। पहली बात तो ये भाषण सबसे लंबा था, मुझे नहीं लगता कि इससे लंबा भाषण उन्होंने किसी सार्वजनिक सभा में दिया हो। दूसरी बात, बार बार वो ये कह रहे थे कि अफवाहें हैं, झूठ है, मिथक प्रयास है और जो और नाम से कांग्रेस के लोगों का नाम भी लिया, गांधी परिवार के लोगों का नाम भी लिया, लेकिन सच तो ये है कि गांधी परिवार और कांग्रेस का हाथ इसमें उतना ज्यादा नहीं दिखता है जितना कि एक तरह से स्वतः स्फूर्त लोग सड़क पर आ रहे हों और हस्तक्षेप कर रहे हों। तो इतना डायरेक्ट एक्शन तो हमने कभी देखा नहीं है।
तो क्या लगता है आपको कि वो अपना मैसेज कितना कन्वे कर पाए और जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है ये रुक जाएगा?
मेरे ख्याल से कुछ समय तक तो प्रोटेस्ट पर थोड़ी रोक लगेगी और लोग थोड़ा रुक के सोचेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, लेकिन उसका उल्टा भी पड़ सकता है। लोग एक बार रुक के सोचेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और वो कितना सही है और कितना लागू होता है। जो वो कह रहे हैं वो गलत नहीं है कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बाहर से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए है और यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन उसी के साथ उन्होंने उल्लेख किया उन घुसपैठियों का जो कि यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो हमारे देश में तो शरणार्थी जगह जगह से आए हैं और जगह जगह से बहुत सारे समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको आश्वस्त करने में थोड़ा समय लगेगा।
और दूसरी चीज, उन्होंने NRC को लेकर कहा कि NRC लाने पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लग रहा है, क्या एक तरीके से ये एक संदेश देने वाली चीज थी कि अब NRC नहीं आने वाला है, या अगर आएगा तो बहुत इस पे कानूनी बहसों के बाद ही आ पाएगा?
जी, मुझे ये लगता है कि एक कदम उन्होंने पीछे लिया NRC से। लोगों ने उनको समझाया होगा कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को उस तरह की परेशानी भुगतनी पड़े जो कि हमें दिल्ली और अन्य जगहों पर पिछले 4-5 दिनों से दिखाई दे रही है। तो NRC पर एक कदम पीछे लिया गया है क्योंकि लोगों के मन में बहुत संशय और भय है कि NRC का फॉर्म कहाँ और कैसा होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आप भारतीय हैं या विदेशी हैं। मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों के पास तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कोई इस तरह का कागज नहीं होता है, तो लोगों के मन में बहुत भय और संशय है। मुझे लगता है कि अगर वो इस भय और संशय को दूर करने की कोशिश करते और एक पूरा खाका लोगों के सामने रखते कि हम ये करने जा रहे हैं, उसमें आपको ये कागज देने पड़ेंगे, ये सबूत देना पड़ेगा और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपील के लिए कार्रवाई की व्यवस्था होगी, यदि वो ऐसा कहते तो शायद लोगों के मन में जो एक तरह से घबराहट है वो शायद दूर हो जाती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में रैली के मायने, अधिक जानकारी दे रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए इन हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी हिंसक प्रदर्शनों की खबर नहीं आई। रुख करते हैं कानपुर का, जहां हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र मौजूद हैं। समीर, हमें बताएं कि उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं, अभी आप कानपुर में ही हैं?
जी, शायद अभी मैं कानपुर में ही हूं और उत्तर प्रदेश में जैसा आपने बताया कि आज किसी ताज़ा हिंसा की खबरें तो नहीं मिली हैं, और लेकिन कानपुर में आज अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ जो जहाँ पे कल हिंसा हुई थी जिस इलाके में, यतीम खाना इलाके में, करीब दोपहर बाद तक वो पूरा छावनी बना रहा, लोगों की आवाजाही जरूर रही लेकिन सारी दुकानें वहां बंद थी। कानपुर के तमाम बाजार बंद थे, कुछ बाजार तो रविवार को वैसे भी बंद रहते हैं, लेकिन देखा गया।
जी समीर, आप सुन पा रहे हैं हमें?
एक हाँ,
जी नेटवर्क की बड़ी समस्या है और जिस जी बताएं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि कानपुर में आज एक व्यक्ति की जो परसों की हिंसा में घायल हुए थे उनमें से एक की आज, यानी केवल कानपुर में 3 लोगों की मृत्यु अब तक हिंसा में हो चुकी है। और ये जो जिन इलाकों में शनिवार को हिंसा हुई थी वहां पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक तरह से देखा गया कि भय है, खौफ है, और कई जगह यही चर्चा हो रही थी कि स्थानीय लोगों की बजाय ये जो हिंसा हुई है वो यहाँ के लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग थे। शांति व्यवस्था कायम करने की पुलिस और प्रशासन तमाम तरह की अपने ढंग से कोशिशें कर रहे हैं, लोगों के साथ वार्ता भी कर रहे हैं, इस तरीके से व्यवस्था इस बनाए रखने की कोशिश हो रही है कि अब आगे कोई हिंसा ना हो, लेकिन तमाम इलाकों में जो लोगों में डर है, खौफ है, और जिस तरीके से इंटेलिजेंस का फिगर देखा गया इस पूरे सारी जगहों पे पूरे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए ये लगता है कि आगे ये शांति कितनी बनी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंसा में जो दोषी पाए जाएंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का उसकी उनसे वसूली की जाएगी और उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।
समीर, हमें ये बताएं कि अभी कानपुर से कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और लखनऊ में कैसे हालात हैं?
कानपुर में कुल मिलाकर के 21 लोगों को हिरासत में कई लोगों को लिया गया है, लेकिन 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी तमाम जांच पड़ताल के बाद उनको लगा कि ये लोग हिंसा में किसी न किसी तरीके से दोषी थे, पुलिस को ये लगा, तो 21 लोग जेल भेजे गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये देखा जा रहा है कि कौन किनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अभी राज्य के जो पुलिस प्रमुख है DGP ओपी सिंह, उनका ये कहना था कि उसकी गंभीरता को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो हिंसा फैलाने में या हिंसा को भड़काने में जिम्मेदार थे।
समीर, हमें ये भी बताएं कि बहुत सी जगहों पर इंटरनेट बंद है और बहुत सी जगहों पर जो टेलीकॉम की सर्विसेज हैं वो बहुत बाधित हैं, कहाँ कहाँ पर ये है और कब तक बहाल हो पाएंगी?
देखिए, कल लगभग 11-12 जिलों में ये कार्य आधिकारिक रूप से इंटरनेट सेवाएं बाधित गई हैं, अभी बंद ही रहेंगी। अभी हमारी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि आज पूरा दिन पूरी देखा गया है, पूरी रात अगर स्थिति ठीक रही तो हो सकता है कि कल या परसों से इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी जाए। तमाम शहरों में, लगभग 11-12 शहरों में उत्तर प्रदेश के जहां हिंसा हुई है वहां पर इंटरनेट अभी भी बंद है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज जो शुक्रवार शनिवार तक बंद थे उनको 24 तारीख तक कई जगहों पर और आगे बंद कर दिया गया है। हालांकि वजह ये बताई गई है, कानपुर में भी 24 तक शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं, वजह ये बताई गई है कि शीतलहर के कारण यानी ठंड के कारण स्कूल बंद किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए समीर आत्मज मिश्र। कानपुर में स्थिति सामान्य लेकिन लोगों में खौफ का माहौल। वहीं मेरठ में नागरिकता कानून के खिलाफ शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों में 5 लोगों की मौत हुई थी। मेरठ में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। BBC संवाददाता जुबैर अहमद उस इलाके में गए जहां हिंसक प्रदर्शन हुए थे, वहां उन्होंने कुछ युवाओं से बात की, सुनिए।
मैं इस वक्त फिरोजनगर में हूँ, घंटे वाली गली फिरोजनगर जो मेरठ का बिल्कुल अंदरूनी इलाका है और ये मुस्लिम इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम नौजवान इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, बच्चे आप थोड़ा सा हट जाओ, आप इतने भी बड़े नहीं हो कि बात कर सकें। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपका नाम बता दीजिए।
महफूज साफी एडवोकेट।
महफूज, ये बताइए कि यहाँ पर ऐसा, यहाँ मैं घूम रहा हूँ तो लोगों में थोड़ी दहशत नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह लगती है आपको?
सर, दहशत की वजह तो पुलिस प्रशासन का दमनकारी रवैया है फिलहाल, और बाकी थोड़ा लोगों के अंदर जानकारी का भी अभाव है। अभी जो नया कानून CAA आया है, ये धर्म के आधार पर इन्होंने लागू किया कि हम केवल दूसरे मुल्कों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे, वहाँ के बहुसंख्यक नहीं। वहाँ के बहुसंख्यक मुस्लिम जो यहाँ रह रहे हैं, ये कहते हैं इलीगली रह रहे हैं वो यहाँ पर, लेकिन जब उन्हें तो ये नागरिकता दे दी जाएगी जो दूसरे धर्म के लोग हैं। अब ये सवाल मुस्लिमों से पूछा जाएगा कि आप घुसपैठिए हैं तो साबित कैसे करें?
लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये जो कानून आया है इसमें भारत में जो ऑलरेडी मुसलमान रह रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या पूछा जाएगा यहाँ के लोगों से? उनके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे प्रूव करने के लिए
तो भारत का नागरिक। NRC जब लागू करेगी, राज्य सरकार करेगी, तब ये होगा।
नहीं सर, तो NRC ये भ्रम तो दूर करना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि हम NRC लागू करेंगे या नहीं करेंगे।
आपका नाम क्या है?
जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है।
मोहम्मद साजिद, अच्छा, आपको किस बात का डर लग रहा है? क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से लग रहा है या
जी डॉक्यूमेंट्स की वजह
इन्फॉर्मेशन नहीं है?
डॉक्यूमेंट्स की वजह लग रही है। ये बता रहे थे कि 1971 से पहले का ये कागजात चाहिए तो हम कहाँ से लाएंगे? हमारे दादी दादा भी नहीं है, वाली साहब भी नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? हमें तो बहुत परेशानी हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा सही तरीके से।
तो आपको खदशा किस बात का है कि आपके पास कागजात है नहीं या फिर आप जुटा नहीं पाएंगे?
पता नहीं जुटा नहीं पाएंगे, कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, कोई अलग होगा कोई नहीं होगा, पता नहीं क्या मसला बैठे। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे देश से निकालने का हिसाब किताब बनाया जा रहा है।
आपका नाम क्या
है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है, सनाब मोहम्मद यूनुस है।
जी, तो आप NRC की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं वो जो नया कानून आया है उसके खिलाफ कर रहे हैं। NRC तो अभी लगा नहीं,
अभी लगे नहीं लगे भाई, लेकिन उस प्रोडक्शन में भी अभी देखो आप क्या हाल हुआ। लोगों ने अगर अपनी मांग करी है इस कानून को हटाने के लिए, इस प्रोडक्ट को हटाने के लिए, तो यहाँ अंदर घुसकर
गोलियां चलाई गई हैं,
बच्चों पर खुलेआम गोली चलाई गई, जबकि किसी कानून में ये लो नहीं है कि खुलेआम गोली चलाई जाए, आंसू गैस का इस्तेमाल करा जा सकता है,
केवल ने गोली चलाई,
पुलिस प्रशासन ने।
लेकिन पुलिस जो कह रही है कि उनके बंदूकों से एक भी गोली नहीं चली,
तो फिर क्या
है? कहां से गोली आई?
यहां फिर गोलियां कहां से आई?
वो कह रहे हैं कि
ये तो इन पे तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, ये फिर काहे से मरे? जवाब यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्ष जहां एक ओर अपना विरोध जता रहा है, वहीं बीजेपी कह चुकी है कि वो इसको लेकर घर घर जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। अपनी बेबाक राय के लिए पहचाने जाने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी नागरिकता संशोधन कानून का बचाव किया है। उनसे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने खास बातचीत की।
ये तो गलतफहमी में हो रहा है। क्या हुआ कि कई सालों से 1947 से हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस, क्रिश्चियंस, जैन्स, ये बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इस्लामिक मुल्लाओं के लपेट में भाग के आए यहाँ, और कुल मिलाकर 31 दिसंबर 2014 तक हमारी जो लिस्ट है उसमें 31,313 लोग हैं। अब एक भी मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से वहाँ के धर्म या मजहब के आधार पर आए नहीं।
लेकिन अफगानी तो वहाँ पे जो हालात है उसको लेकर तो यहाँ बहुत,
वो तो अलग कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है ये 47 से है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1947 में ही नवंबर में रेजोल्यूशन पास किया कि ऐसे लोग जो आते हैं पीड़ित होकर मजहब के कारण, उनको हमें सिटीजनशिप देना चाहिए। और कई नेताओं ने बाद में, और लास्ट था मनमोहन सिंह जो 2003 में पार्लियामेंट में, जिसका हमारे पास टेप भी है, कहा कि इन लोगों को
एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो बोलते राज्यसभा में,
कांग्रेस जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था गोगोई, उसने भी मोदी को चिट्ठी लिखा। तो ये इनको यहाँ रहने के लिए तो कांग्रेस ने दे दिया पर्चा कि तुम जितना साल रहने चाहते हो रह सकते, बट उनको सिटीजनशिप ना होने के कारण उनको आधार कार्ड नहीं मिलती थी, पासपोर्ट नहीं मिलती थी, और आईडी के नाम पर कुछ नहीं मिलती थी, और यही क्लासिफिकेशन था इलीगल माइग्रेंट, अवैध प्रवासी। तो इस मामला को ख़त्म करने के लिए इन 31,313 लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए फैसला किया।
लेकिन पार्लियामेंट की आपने बात की, वहां पर आपका भी भाषण हुआ था जिसमें आपने श्रीलंकन तमिल्स को जो है नागरिकता नहीं देने की बात की।
हाँ, किया।
क्यों?
बिकॉज वो भी तो धर्म के आधार पर नहीं आए,
तो उनका जो प्रोसिक्यूशन हुआ, उनकी जो प्रताड़ना हुई,
तो सिर्फ वहाँ युद्ध हुआ एलटीटी और श्रीलंकन फोर्सेस के बीच में, उसमें हुआ है, और सब वापस चले गए। ये नहीं कि आने के बाद यहीं रुके हैं, 1 करोड़ आए थे, अब 16,000 छोड़कर बाकी सब चले गए। ये 16,000 भी नहीं गए क्योंकि भारत सरकार ने कहा हम सरकार घर बना के देंगे, अब उसमें घर बनाने में विलंब हुआ है, तो ये 16,000 भी चले जाएंगे। वो ऐसे ही खामो काम जो डीएमके वाले हैं वो इस सवाल को उठाते हैं।
आप का मानना है कि ये जो एजिटेशन चल रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, इसका कितना फायदा या नुकसान होगा? फायदा इन द सेंस ऑपोजिशन पार्टीज को, और नुकसान बीजेपी को कितना होगा?
बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा इससे।
क्यों?
क्योंकि क्या है कि पहले तो जिन लोगों को सिटीजनशिप मिली है वो तो अपनी जय जयकार व्यक्त कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ये जो सारा जो उपद्रव हुआ है या जो विरोध हुआ है ये तो गलतफहमी में हुआ है कि एनआरसी के लेकर।
ये थे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। रुख करते हैं झारखंड का, जहां विधानसभा चुनावों के बाद कल मतगणना होनी है। 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में झारखंड में मतदान हुआ था। कल सुबह 8 बजे से 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना होगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
जहां तक तैयारियों का सवाल है तो हर जिले में और झारखंड के जितने भी जिले हैं सब जगह जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे जहां पे ईवीएम मशीन्स को रखा गया वो तो है ही है, काउंटिंग हर जगह होगी, और रांची में खासतौर पर रांची जिले में पड़ने वाले जितने भी बूथ हैं उनकी काउंटिंग रांची में है, और रांची के अलावा जो दूसरे जिले हैं सबके जिला मुख्यालय पे अलग अलग काउंटिंग होगी, और काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो आज की रात है ये बड़ी कयामत की रात इसलिए भी है क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरह के रुझान बता रहे हैं तो वो जो सत्तारूढ़ दल हैं
उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक जरूर है, लेकिन अभी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल के नतीजे कुछ बता रहे थे और रिजल्ट कुछ और आया, तो इस वजह से लोग अभी यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यह है कि मजेदार लड़ाई जरूर है। एक तरफ गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का था, वहीं बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा है पहली बार। भारतीय जनता पार्टी ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा है बिना किसी गठबंधन के, और जो सबसे प्रमुख उनका घटक दल था साथ में दोस्त ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू, उसने अलग होकर चुनाव लड़ा है। तो ये चुनाव जो है मल्टी कॉर्नर्ड कई जगहों पर, क्योंकि झारखंड की टोपोग्राफी ऐसी है कि जो इलाके बिहार से लगे हुए हैं झारखंड के, वहां पे अलग तरह के दलों का प्रभाव है, अलग अलग तरह के इश्यूज हैं, भाषा भी अलग है, और जो इलाके ओडिशा से लगे हुए हैं वहां के इश्यूज अलग है, अलग पार्टी का प्रभाव है, और उसी तरह संथाल परगना और इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे बोकारो जमशेदपुर धनबाद, यहाँ के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं और अलग 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 दलों के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो इसलिए चुनावी नतीजे बहुत मजेदार इसलिए भी होंगे क्योंकि अगर किसी दल को या गठबंधन को पूर्ण बहुमत आता है या किसी एक दल को बहुमत आता है तो ये पहली बार ऐसा होगा कि पूर्ण बहुमत मिले, क्योंकि यहाँ पे 81 सीटों वाली जो विधानसभा है उसमें यही सबसे बड़ी समस्या है कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिल पाता है।
झारखंड विधानसभा के लिए कल होगी मतगणना। अब समय है खेल समाचारों का, और खेल की जानकारियों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आदेश कुमार गुप्त।
जी, अगर सबसे पहले बात की जाए क्रिकेट की, क्योंकि आज क्रिकेट की ही बात होगी क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भी दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच कटक में जो मुकाबला है, जहां भारत के सामने जीत के लिए 316 रनों का लक्ष्य है, लेकिन अगर भारतीय बल्लेबाजी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी है। 29 ओवर में भारत का स्कोर फिलहाल एक विकेट खोकर 165 रन है। केएल राहुल नाबाद 76 रन बनाकर, जिसके लिए उन्होंने 85 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके उनके बल्ले से निकले, एक छक्का भी उसमें शामिल है, और कप्तान विराट कोहली उनका साथ दे रहे हैं, 26 गेंदों पर उनके बल्ले से 23 रन निकले जिसमें उनके 2 चौके शामिल हैं। इससे पहले रोहित शर्मा ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों पर 63 रन बनाए जिसमें उनके 8 चौके और एक छक्का शामिल था, वो शाई होप द्वारा कैच हुए जेसन होल्डर की गेंद पर,
और एक रिकॉर्ड भी बनाया है।
जी हाँ बिल्कुल, सनत जयसूर्य का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है 22 साल पहले, जब 2387 रन बनाए थे जयसूर्य ने, और उसके लिए केवल उन्हें 9 रनों की ज़रूरत थी, और इस साल तो रोहित शर्मा का बल्ला खूब गड़ जाए क्योंकि विश्व कप में उन्होंने 5 शतक बनाए, इसके अलावा पहले मैच में उन्होंने जिस
ये रिकॉर्ड सलामी बल्लेबाज के तौर पे सबसे अधिक रन बनाने का है शायद।
जी देखिए, एक साल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है, और अभी अब ये देखना बाकी है कि जो वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज है वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अगर एक दो विकेट बीच में गिरते हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं क्योंकि बिल्कुल फ्लैट विकेट है। और देखिए वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों ने भी, निकोलस पूरन ने जिन्होंने 89 रन बनाए, और उसके बाद किरेन पोलार्ड ने 74 रनों की पारी खेली, शाई होप ने 42 रन बनाए, रोस्टन चेज ने 38 रन बनाए, और शिमरन हेटमेयर ने 37 रन बनाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज़ ने भी एक चुनौतीपूर्ण स्कोर भारत के सामने रखा। उधर अगर पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो श्रीलंका के सामने जीत के लिए 476 रनों का लक्ष्य है, लेकिन आज जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तब श्रीलंका का स्कोर 7 विकेट खोकर 212 रन था, यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है उसे जीत की खुशबू आ रही है, क्योंकि श्रीलंका को अभी 264 रनों की ज़रूरत है जबकि उसके 3 विकेट बाकी हैं।
खेल समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त जी, और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नागरिकता कानून का बचाव किया है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर नए कानून के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान चुनाव के शुरुआती नतीजों में मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। चुनाव में आधे से ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं, लेकिन गनी के मुख्य प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया है। हांगकांग में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चीन के वीगर मुसलमानों के समर्थन में रैली निकाली। माना जा रहा है कि चीन ने शिनजियांग के हजारों वीगर मुसलमानों को नजरबंदी कैंपों में भेज दिया है। एक ब्रितानी सुपरमार्केट चेन टेस्को ने एक चीनी सप्लायर से सामान लेना बंद कर दिया है। उस चीनी सप्लायर पर आरोप है कि उसने कैदी श्रमिकों से जबरदस्ती चैरिटी क्रिसमस कार्ड पैक करवाए। बीबीसी समाचार।
आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। आपसे अब अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।